के नाते पेजिस को पलटना प्यार से चाहिए ताकि उसकी आवाज़ भी ना ख़राब हो, आवाज़ भी ना आए, और दूसरी बात है कि हमारी बुक्स भी सही रहे। शुरू करते हैं। नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादू, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बी श्राह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। सेल्फ़ ग्रूमिंग के सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है, ज़िंदगी फेयर नहीं है। बहुत सारे लोगों की ये जुमला सुनना होगा, ज़िंदगी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, और नौज़ बिला बाज़ लोग तो ज़िंदगी की जगह अल्लाह का नाम भी ले लेते हैं। तो किन लोगों को ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी फेयर नहीं, जो लोग ज़िंदगी से रूठे हुए होते हैं? तो आइए देखते हैं कि क्या वाकई ज़िंदगी फेयर नहीं है, या हमारे साथ जो कुछ हो रहा है क्या ठीक नहीं हो रहा। ज़िंदगी से रूठे लोगों की निशानी क्या होती है? कैसे पता चलता है कि कोई शख्स ज़िंदगी की हर सांस को जी भर के जी रहा है या महज ज़िंदा है? फ़र्क है दोनों में। देखिए, ज़िंदा रहने में और ज़िंदगी को जीने में, ज़िंदगी से नाखुश, शिकायतों के ढेर पर खड़े लोगों को किस इत्मीनान दे सकती है? खुशी से नाराज़गी इख्तियार कर लेने वालों को कैसे दोबारा जीने पे आमादा किया जा सकता है? क्या कभी आपने अपने आसपास लोगों को ये कहते हुए सुना है कि ज़िंदगी बोझ है, ज़िंदगी फजूल है, ज़िंदगी संगदिल है, ज़िंदगी कातिल है, ज़िंदगी बड़ी ज़ालिम है, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, ज़िंदगी कितनी कठिन है, ज़िंदगी बेहद दुश्वार है, और ज़िंदगी मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रही? पहले आप बताइए, आपने सुना कभी किसी से ये? जी बिल्कुल, लोग तो कहते हैं ज़ालिम ज़माना, ज़माना बड़ा ज़ालिम है। तो ये कौन लोग कहते हैं, किनका होता है जो ज़िंदगी से रूठे होते हैं? और अगर आपका ज़्यादातर वक्त इन्हीं ख्यालात के मालिकान के साथ गुजरता है, या आप बाकायदगी से इस माहौल का हिस्सा रहे हैं जहाँ इस तरह के एतमाद शिकन जुमलों की तकरार है, तो इस बात के कवी इम्कान है कि आप भी इस नारे के असीर बन चुके होंगे कि ज़िंदगी अनफेयर है। यानी जैसे लोगों में आप रहते हैं ना, आप वैसे ही सोचते हैं। दुखी लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी दुखी हो जाएंगे, और नेगेटिव सोच के लोगों के साथ होंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी नेगेटिविटी आ जाएगी, और ऐसे ही होता है। फिर लोगों की अक्सरियत हर लम्हे ये साबित करने पर तुली नज़र आती है कि ज़िंदगी ने इनके साथ किस किस्म का खेल खेला है, ज़िंदगी ने इनके साथ कहाँ कहाँ वफा नहीं की, ज़िंदगी ने किस किस मरहले पर इनकी उम्मीदों को झंझोड़ के रख दिया, इनके जज्बों को तोड़ के रख, इनके अरमानों का खून कर दिया। जो उन्होंने सोचा था वो हुआ ही नहीं, और जो हुआ में उन्होंने कभी सोचा भी ना था। आज भी ऐसे जुमले बोलते हुए कई लोग आपकी जहनों में आएंगे, जो मैं सोचती थी वो कोई नहीं हुआ, और जो हो गया वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और दुखों की तस्वीर बने हुए ऐसे लोग दुनिया से चले जाते हैं। ठीक ही तो कहते हैं आप, ज़िंदगी फेयर है ही नहीं, ज़िंदगी अनफेयर है। कुरे अर्ज़ पर मौजूद मुख्तलिफ लोगों का ज़िंदगी के साथ तजुर्बा मुख्तलिफ होने की वजह भी यही है। सब लोगों को एक से हालात कहाँ नसीब होते हैं? हर इंसान की सलाहियतें, खूबियां, माहौल, इम्कानात, हादसात, परेशानियां, मवाके, हालात, ज़िंदगी सब की प्लेट में एक ही जैसा, एक ही जितना, एक ही जगह, एक ही वक्त में, एक ही हाथ से, एक ही रफ्तार से, एक ही अंदाज से, एक ही लम्हे में कब डालती है? सच है ना, चार बच्चे भी होंगे ना एक माँ के, तो सबका नसीब फ़र्क है। कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई पैसों में खेलता है तो कोई गुर्बत में खेलता है, ये तो हम सब देखते हैं दिन रात। तो फिर इसका मतलब है कि ज़िंदगी अनफेयर है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि हर इंसान की प्लेट का साइज़ भी मुख्तलिफ होता है। आप कहेंगे प्लेट का साइज़, कई लोगों के पास तो प्लेट ही नहीं है। कुछ के पास इसके बरक्स बड़े बड़े डोंगे हैं, पराते हैं, शायद देगे। दोस्तों, आप दुरुस्त कहते हैं, ज़िंदगी किसको क्या देती है वो सब के लिए फेयर नहीं है। अल्लाह की इस कायनात में सब बराबर नहीं है, सब के साथ होने वाले वाक़यात बराबर नहीं है, सब के सदमात बराबर नहीं है, सब के हादसात बराबर नहीं है। मुझे मज़ीद कायल मत कीजिए, मैं पहले ही मान चुका हूँ कि ज़िंदगी फेयर नहीं है। लेकिन साथियों, क्या आपको नहीं लगता कि इसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है? जिंदगी फेयर नहीं तो क्या हुआ, खूबसूरत तो है। खूबसूरत खाक खूबसूरत है जिंदगी, हर रोज हालात की तेज धार तलवार काट रही है, हर रोज इरादे टूट रहे हैं, हर रोज जिल्लतें मायूसियां नाकामियां घेरा तंग कर रही हैं, और आप कहते हैं कि जिंदगी खूबसूरत है। हो सकता है आपने मुंह बना के कहा हो। ना दुखी होता है ना वो कहता है ये सब झूठ है, ये इनको बस बातें करनी आती हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, ने हो सकता है कि आपके ख्याल में आपके साथ अब तक अच्छा सलूक ना किया हो, लेकिन हो सकता है कि जिंदगी ने आज तक आपके ख्याल में आपके साथ अच्छा सलूक ना किया हो, लेकिन मुझे यकीन है कि इस चैप्टर को ख़त्म करने तक मुझे यकीन है लेकिन इस चैप्टर को ख़त्म करने तक मुझे यकीन है कि मैं आपको कायल कर लूँगा कि ज़िंदगी खूबसूरत है, बिल्कुल इसी तरह जैसे शुरू में आपने मुझे कायल कर लिया कि ज़िंदगी अनफेयर है। यहाँ से ये सीखिए कि किसी को अपनी बात मनवानी हो ना तो पहले उसकी मान लें। बाज़ वक़्त कोई अपने दिल में 10 बातें लेके हमारे पास आता है ना, तो हम उसकी एक नहीं सुनते और अपने मशवरे देते हैं। सोने जैसे भी मशवरे देंगे ना, वो कहेगा अपने पास रखो, मैं कुछ सोच रहा हूँ तुम और कुछ सो रहे हो, मैं कुछ कहती हूँ तुम कुछ कहते हो। एक दफ़ा अगले की सुनो, यस ओके ठीक फाइन इस ठीक ठीक। जब अगले का जहन खाली हो जाए ना 15-20 मिनट बोलकर, फिर आप क्या, आपने कह लिया, सोच लें कोई और तो नहीं बात दिल में, नहीं अच्छा जी ठीक है, अब आप बोले थे तो मैंने सुना, अब मैं बोलती हूँ आप सुनेंगे। ये है बेस्ट तरीका काउंसलिंग का, और हम दिन रात इसी पे अमल करके अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के मसले हल करने की कोशिश भी करते हैं और उनकी सुनते सुनाते हैं, क्योंकि जब तक आप सुनाने वाले हैं आप सुनेंगे नहीं। तो ज़िंदगी में ये गहरा असूल सीख लीजिए, किसी की बात पहले सुन लेना, उसको मुतमईन करना होता है। तो आप कह मान लिया जी जिंदगी मुश्किल है, जालिम है, कठिन है, दुश्वार है, इंसाफ नहीं, लेकिन अब आप सुनिए कि ज़िंदगी खूबसूरत कैसे है। बस ज़रा सी ऐनक बदलनी पड़ेगी, देखने का अंदाज, सोच का जाविया बदलना होगा। अनफेयर दिखने वाली बोझ ज़दा ज़िंदगी खूबसूरत दिखने लगेगी। मैं ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकता हूँ, इसलिए कि ज़िंदगी के 24 साल मैं भी ज़िंदगी को अनफेयर ही समझता था। ज़िंदगी मुझे बोझ दिखाई देती थी, अनफेयर लगती थी। हर लम्हे दूसरों से मवाजना करके मैं खुद को तकलीफ देता रहा। दूसरों के मुकाबले में मैं खुद को हकीर समझता रहा। मुझे हर वक्त ये ख्याल डसता रहा कि दूसरों के पास जो कुछ है वो मेरे पास क्यों नहीं है। मैं ज़दा ख़ानदान में पैदा हुआ, ये अनफेयर है। मेरी बाँ, अब आप इन सारी बातों को सुनते वक्त सोचिए कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ ना, जो बातें आप बोलूँगी ना इसको सुनते वक्त आपने अपने हकायक लिखने हैं, और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो कहिए जिएगा ठीक है कोई मेरे जैसा और भी है, और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो आप कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे हालात तो इससे बहुत अच्छे हैं। मैं एक गुरबत ज़दा ख़ानदान में पैदा हुआ, यह अनफेयर है। मेरी माँ बचपन ही में मुझे अपनी मोहब्बत से महरूम करके अबदी नींद सो गई, अनफेयर है। मेरे माशी हालात से लेकर जज्बाती सदमात तक हर चीज़ मुझे ज़िंदगी के अनफेयर होने का यकीन दिलाती रही। लोग कहते हैं ना इमोशनली हम बहुत टॉर्चर किए जा रहे हैं, हम तो बस महरूम हैं हर खुशी से। जिस्मानी खद्दोहाल से शक्लो सूरत तक, सलाहियतों के जायज़े से लेकर आगे बढ़ने के मौक़े तक, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेकर सिविल सर्विसेज एकेडमी तक, जंग अखबार की कैंटीन से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों के इंटरव्यूज तक, हर जगह मुझे ज़िंदगी अनफेयर लगी। समाजी स्टेटस से लेकर असर सूख तक, लिबासों गुफ्तार से लेकर ज़िंदगी की आसाइशों तक, लाइफस्टाइल से लेकर रहन सहन तक, मैंने ज़िंदगी के अनफेयर होने की गवाही पाई। तो फिर साबित ये हुआ कि ज़िंदगी बहुत अनफेयर है। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता इन सब के बावजूद ज़िंदगी खूबसूरत है? हो सकता है आपको मेरी इस बात पर गुस्सा आ रहा हो, आपको ज़िंदगी के अनफेयर होने के अलावा कुछ और दिखता ही ना हो। दो कैफियत इंसानी जहन में कभी इकट्ठी नहीं हो सकती, एक है शुक्र की कैफियत और दूसरी है शिकायत की। इसको बड़ा बड़ा करके लिखिए। شکر کی کیفیت اور شکایت کی کیفیت، جس کو میں اپنی زبان میں کہوں گی کہ شکر ورسز شکایت. چاہیں تو پیج پہ دو کالم بنا لیں، ایک طرف شکر اور دوسری طرف شکایت. کیا ہوگا فرق؟ اگر آپ شکر کریں گے تو پھر آپ شکایت نہیں کر سکتے، اور اگر آپ شکایت کریں گے تو پھر آپ شکر نہیں کر سکتے. جب ہم شکر کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو شکر والی چیزوں کی فہرست اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں گنجائش ہی نہیں بچتی کہ ہم کس چیز کی شکایت کر سکیں. سچ ہے کہ نہیں؟ تو اگر آپ کو زندگی سے اور لوگوں سے شکایتیں ہیں نا، تو شکر کیجئے. شکایتی رویہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا، سب خوبیوں پہ پانی ڈال دیتی ہے انسان کی یہ خوبی کہ وہ شکایتی رویہ اختیار کرے. حقائق بتانے والا انداز اچھا ہوتا ہے، شکایتیں لگانے والا انداز اچھا نہیں ہوتا. تو شکوے شکر میں بدل جائیں تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. آپ کہہ لیجئے کہ شکایتی رویہ ہو تو زندگی انفیئر بنتی ہے، اور شکر کا رویہ ہو تو زندگی خوبصورت بنتی ہے. زندگی انفیئر ہو سکتی ہے، میں اگرچہ اس سے متفق نہیں ہوں، لیکن آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی محبت میں تھوڑی دیر کے لیے متفق ہو جاتا ہوں. لیکن سچ یہ ہے کہ زندگی ایک پیکج ہے. بنائیے ذرا اپنی کاپی میں ایک پیکج. پیکج میں بہت کچھ ہوتا ہے نا، ایک نہیں ہوتی. اس میں سب کچھ ہے، لیکن سب چیزیں آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں ہو سکتی. کبھی آپ نے کوئی پلیٹر منگوایا ہو کھانے میں، تو آپ کہتے ہیں ہاں چکن میں لے لوں گی، سیلڈ لے لوں گی، لیکن یہ مائنیز سوس میں نہیں لوں گی. تو کہتے ہیں آ رہا ہے نا اندر پلیٹر کے، آپ نہ کھائیے گا، باقی لے لو. پیکج ہے زندگی. پسند کی چیزیں اٹھا لیں، فائدے کی چیزوں سے فائدہ اٹھا لیں، باقیوں کا شکوہ نہ کریں. آپ کوئی پلیٹر پہ جا کے مارے، یہ کیوں ڈالی مائنیز آپ نے، آپ کو نہیں پتا میں نہیں کھاتا، آپ کو نہیں پتا یہ کتنی خراب ہے، آپ کو تو کہے گا لیکن ایک منٹ، وہ اس میں وہ چھوٹی سی کٹوری اٹھا کے اندر رکھے گا، کہے گا آپ بولیے، آپ کہیں گے آپ سب ٹھیک ہے. تو یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے. بہت سارے لوگوں کو جینے کا یہ گن نہیں پتا. گھریلو زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی اور دین کے کاموں کی زندگی میں یہ بنیادی اصول یاد رکھیے کہ شکایتیں کرنے کی بجائے اگر آپ اس کا حل پیش کریں، پھر بعد میں کہیں کہ حل یہ ہے اور اس حل کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پرابلم یہ تھا، تو لوگ آپ کو محسن کہیں گے. اور اگر آپ حل پیش کیے بغیر صرف حقائق بھی بیان کر دیں تو وہ شکایت ہی لگتی ہے. زندگی فیئر ہو سکتی ہے لیکن دوستو زندگی انفیئر ہو سکتی ہے لیکن ہے بہت خوبصورت. اس کو خوبصورت رہنے دیجئے، اس کو خوبصورت طریقے سے گزاریے اور خوبصورتی ڈھونڈیے. زندگی کی خوبصورتی ڈھونڈنے سے مشکلات کم ہو جاتی ہیں، اور شکر کی کیفیت شکایت کے انبار سے دور رکھتی ہے. زندگی انفیئر ہے، یہ باقیوں کی نسبت کچھ زیادہ مہربان ہے. اس کا تعلق آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور گرد و پیش کے حالات سے نہیں، بلکہ آپ کے بولیے سوچ کے انداز سے. پیچھے بات جو گزری ہے، زندگی قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، تو پھر اس تحفے کو کچھ لوگ اپنے لیے زحمت کیوں بنا لیتے ہیں؟ اپنی سوچ کے انداز کی بدولت، لکھ لیں، تحفہ ہے یہ اللہ کا. سوچ بدلیں گے تو خوبصورت لگے گا، اور سوچ ٹیڑی ہوگی تو اس تحفے میں بھی نقص نکلیں گے. ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے زیادہ خوش قسمت ہیں، وہ اللہ میاں کے زیادہ لاڈلے ہیں، ان پہ زندگی کی نظر کرم کچھ زیادہ ہے. اگر ان سے پوچھیں تو وہ خود کو عتاب کا شکار سمجھتے ہیں. عتاب کہتے ہیں ڈانٹ، عذاب ہوتا ہے پکڑ، اور عتاب ڈانٹ ڈپٹ ڈراوے دینا. نہ شکریوں کا پلندہ لیے پھر رہے ہوتے ہیں، البتہ ان کی نگاہوں میں کوئی اور زیادہ فیئر زندگی گزار رہا ہوگا، کوئی اور زیادہ فیئر زندگی گزار رہا ہوگا جس کا در حقیقت وہی حال ہوگا جو ان کا رہتا ہے. زندگی ہمیں کیا دیتی ہے، اسے ہم بدل نہیں سکتے. جائے پیدائش، مادری زبان، ماں باپ بدلنے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں کہاں ہے؟ بدل سکتے ہیں، और बदलना चाहते हैं? कोई भी नहीं। आप चाहते हैं किसी स्पेनिश फैमिली में आप पैदा होते हैं? आप उर्दू ना बोलते, पंजाबी ना आती, है कोई? माँ बदलना चाहते हैं? कोई खूबसूरत सी मॉडर्न औरत ले ले, टपक टपक चलती, परस में लिए हुए, खूबसूरत गोरी माँ ले ले, हैं? कोई और दौलतमंद, सेहतमंद, हेल्दी बाप लेना चाहते हैं? कोई है हम में से अपना बाप बदलना चाहे? हमें विरसे में कैसे बाल, कैसी रंगत, कैसे रुझानात, कैसी बीमारियाँ, क्या सलाहियतें, क्या कदकाट, क्या खूबियाँ, क्या खामियाँ मिली हैं? हमें ये इख्तियार ही नहीं, अलबत्ता ज़िंदगी ने जो हमें दिया, इसे अपने फ़ायदे में, अपने हक़ में, ज़िंदगी सवारने में इस्तेमाल करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में है। चले, कितने लोग हैं जो अपने बाल बदलना चाहते हैं? सारे बदलेंगे, भूरे गोल्डन बाल। आंखों का रंग कितने लोग चाहते हैं नीला होता? तो क्या मुश्किल है, आप 5 रुपए के लेंस लगा ले नीले रंग के। कितने चाहते हैं कि वो गोरे होते? आप में से किसको शौक है गोरे होने का? ये भी आपको ही है, औरों को नहीं है? तो आप गोरी होती, लेकिन इस्लाम से दूर होती तो वो गोरा रंग आपको नहीं खुशी देता? किसका दिल करता वो लंबा होता या लंबी होती, पतला होता? ये तो मुझे पता किस किस का दिल था, ये तो सबकी ख्वाहिश है। अंडे और टमाटर और ऑरेंज हैं, यही खा के बैठे होंगे ना आज बहुत सारे लोग। आप देखिए कि हम जो भी कर लें, लेकिन हम एक खास हद से ज्यादा नहीं बदल सकते। ये लिख लीजिए, जिंदगी में कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। बस जिंदगी के गमों को एक्सेप्ट कर लें, मसाइब को एक्सेप्ट कर लें, बीमारियों को एक्सेप्ट कर लें, जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट कर लें, गुस्से वाली तबीयतों को एक्सेप्ट कर लें, जिद्दी बच्चों को एक्सेप्ट कर लें, ताने देने वाली सासों को एक्सेप्ट कर लें, काम ना करने वाली बहुओं को एक्सेप्ट कर लें, बोझ पड़ने वाले रिश्तों को एक्सेप्ट कर लें। बड़ा सा करके अपने नोट्स में लिख लीजिए, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। कबूल है, कबूल है, कबूल है। जिस दिन आप अपनी जिंदगी के मामलात को कबूल कर लेंगे ना, आप खुश होंगे। फिर आप रोएंगे तो नहीं, फिर आप मुस्कुराएंगे। आप कहेंगे, आज मैंने एक और चीज़ पे फतह पा ली, मैं जीत गई। आज मैंने एक और नाक चीज़ को अल्लाह की रजा के लिए खुशी से कबूल किया। फिर स्माइल, इत्मीनान, मुस्कुराहट, मुस्कान, आपका चेहरा खिला रहेगा। आप कहें, मैं ना खुश रहूं, मैं दुखी रहूं, मैं बीमार हूं, मैं ऐसी नहीं हो सकती। फिर आप महसूस करेंगे कि आपको जिंदगी खूबसूरत लगेगी। हम चाहें तो उम्र भर जिंदगी के अनफेयर होने का शिकायत करते गुजार दें, मर्जी आपकी, चले सारी जिंदगी यही काम कर लें। चाहें तो इन फेयर दिखने वाली चीजों, बातों, खामियों, कमजोरियों को अपनी ताकत बना लें और इन लोगों से कहीं आगे निकल जाएं जिनके साथ आपके ख्याल में जिंदगी कुछ ज्यादा मेहरबान है। मैं आपको ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि मैंने खुद भी यही किया। अपनी जिंदगी के कई साल शिकायतों के ढेर पे बैठा, जिंदगी के अनफेयर होने का रोता रोता रहा, फायदा कुछ भी। बचपन से जवानी तक, सच तो यह है कि मेरे पास किसी भी दौर में वो सब नहीं था जो बाकियों के पास था। मुझे अपने पास महरूमियों के सिवा कुछ दिखता भी नहीं था, यदि कुछ नहीं था सिवाय महरूमियों के। और लफ्ज़ देखिए जरा, महरूमी, महरूम, हराम से, यानी चीज हराम हद तक मेरे पास नहीं थी, मैं उस चीज से दूर था, उस चीज का मेरी जिंदगी में कोई दखल ही नहीं था। बचपन में दूसरे बच्चों के पास खिलौने थे, मेरे पास नहीं थे। इनके पास अच्छे कीमती कपड़े थे, मेरे पास नहीं थे। इनके पास नई किताबें, बैग, यूनिफॉर्म, जूते, कॉपी, पेंसिलें, ज्योमेट्री बॉक्स, साइकिल, मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे पास कुछ भी नहीं। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो कुछ था मेरे पास, इनमें से कुछ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अनफेयर दिखती थी। हत्ता के बाकियों के पास इन सब चीजों के साथ साथ धन थे, मेरे पास तो वो भी ना रहे थे। आप इमेजिन करें जरा। और मुझे इस वक्त आयतें याद आ रही हैं सूरह दोहा की, मा वद्दक रब्बुक व मा कला। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अलम यजिद का यतीम अनफावा व वजदा का दालन फहदा व वजदा का आइलन फागना। देखिए, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान, सबसे कीमती इंसान जिन चीज़ों से महरूम है, इसके बावजूद वो दुनिया के सबसे कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो मुझे आपको किसी दूसरे की बात से कोई नसीहत लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम अपने नबी को उसवे हसना बना ले, माँ बाप तो उनके पास भी नहीं थे। फिर एक दिन आया जब मुझे एहसास हुआ कि इनके पास जो कुछ है वो तो कई और लोगों के पास भी है, लेकिन जो मेरे पास है वो तो बस मेरा ही है। अनफेयर दिखाई देने वाली जिंदगी ने ऐसा रुख फेरा कि बोझ ज़दा जिंदगी तोहफों से लद गई। हर खामी, हर कमज़ोरी, हर महरूमी अल्लाह की तरफ से एक अनमोल अतिया, तोहफा और जजा दिखने लगी। वालदेन का गरीब होना, ख़ानदान का बड़ा होना की नासूदगी, नौजवानी की अजियतें, सब किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा लगने लगी। कि अल्लाह ने मुझसे कोई काम लेना है, लिख लीजिए। अल्लाह कई महरूमियों में डालता है ताकि बंदे से कोई एक काम ले। अल्लाह ने एंड पे ना हर चीज़ बैलेंस करनी है। कुछ को खुद प्लेट में रख के सब कुछ देता है, लेकिन बाद में आखिरी ज़िंदगी में महरूम हो जाते हैं वो। और कुछ को शुरू में कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो मेहनत करते हैं तो अल्लाह उनको दे देता है। वालदेन का गरीब होना और ख़ानदान का बड़ा होना, बचपन की नासूदगी, नौजवानी की अजियतें, सब किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा लगने लगीं। सर बेख्तियार सजदा शुक्र के लिए झुक गया, जहन कुदरत की प्लानिंग पर रह गया। मेरी ज़िंदगी में अनफेयर दिखने वाले वाक़ियात तो हालात में से एक भी वाक्य रूनमान ना होता तो मैं आज ये किताब ना लिख रहा होता। ज़िंदगी के 24 सालों में पेश आने वाले हर वाक़े, हर नाकामी, हर मायूसी, हर महरूमी, हर तंग दस्ती, हर जिल्लत, हर नामर्दी, हर परेशानी ने मेरी मौजूदा ज़िंदगी को सींचा था। ये लिख लें, कितनी महरूमियाँ जमा होती हैं, इंसान की शख्सियत निखरती है, फिर वो करने के काबिल होता है। और जितने आराम और नेमतों और आसाइशों में पल जाते हैं ना बच्चे, वो बिल्कुल ही ऐसे ही वक्ती और सतही ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं कि मेरे पास नाइक के जूते क्यों नहीं, तो मेरे पास फलां जैकेट क्यों नहीं, तो मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं, तो मेरे पास आईफोन 7 क्यों नहीं, और मेरे पास ये क्यों नहीं है। वो आम लोग होते हैं, लेकिन जो मेहनतों और मुश्किलों और मुसीबतों में पलते हैं ना, वो संजीदा बच्चे होते हैं, उनके अंदर ज़िंदगी की हकीकत होती है। मेरी मौजूदा कामयाबियां और ख्वाबों को सच कर दिखाने में सही वक्त पर सही तरीके से अपना किरदार निभाया था। बड़ी देर से एहसास हुआ कि जिंदगी को अनफेयर साबित करने वाला हर वाक्या मुझे दरअसल कुछ सिखाना चाहता था। मेरे सब्र, हौसले, अज़्म और साबित कदमी को आजमाने वाली हर शिकस्त बिलाशुबा मेरी तैयारी का हिस्सा थी। ये तैयारी को बड़ा करके लिख ले, मैं फिर बोलती हूँ। मेरे सब्र, हौसले, अज़्म और साबित कदमी को आजमाने वाली हर शिकस्त बिलाशुबा मेरी तैयारी का हिस्सा था। कुदरत मुझे बार बार नाकाम करके, मेरे ऊपर सैकड़ों दरवाजे बंद करके, मुझे लम्हा बलम्हा इस एक दरवाजे की तरफ धकेल रही थी, जिसके खुलने के बाद मेरी किस्मत खुल गई। मेरी हर नाकामी, परेशानी, आजमाइश, महरूमी जो इस लम्हे में मुझे सर पर लटकती तलवार थी, आज पता चला मेरी साथी थी, मेरी राहबर थी। आज बरसों बाद मैं अपनी किसी नाकामी, किसी बेबसी के किसी लम्हे को पीछे मुड़ के देखूं तो इस लम्हे पर अफसोस करने की बजाय दिल शुक्र के जज्बे से भर जाता। आपको बड़ी हैरतनाक बात लगेगी, लेकिन आज किसी नाकामी को याद करके मैं मुस्कुरा के कहता हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं उस इंटरव्यू में फेल हुआ। सच्ची बात है, जिंदगी में बहुत सारी नाकामियां हमारी कामयाबियों का दरवाजा खोलती हैं। और इस बात को पढ़ के बिल्कुल मैं अपने दिल पे लेके इसको सोच रही थी कि जैसे बचपन से एक ही ख्वाब देखा था मैंने और मेरी दोस्तों ने कि हमने डॉक्टर बनना है। और वो दिन आज भी नहीं भूलता कि जब हमारे ही जितने नंबर ली हुई हमारी दोस्त को आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया 19-20 के फ़र्क से, क्योंकि उसके मामू जर्नैल थे तो उनकी भतीजी को आर्मी कॉलेज में दाखिला मिल गया। और हम सहेलियां यूं टसवे बहाती थी कोई हमारा भी मामू होता और वो जर्नैल होता तो हम भी आर्मी कॉलेज में जाते और फ़ॉन कलर की साड़ी पहनते। ये शौक था हमारा आर्मी कॉलेज में जाने का कि वहाँ की डॉक्टर्स का यूनिफॉर्म फ़ॉन, ये जैसे आपके स्काफ है ना ऐसी साड़ी थी उनका और ऊपर लॉन्ग, ऐसे लगता था जन्नती लोग हैं जिन जिनको ये मिल जाए। और आज मैं सोचती हूँ अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, पता नहीं मैं भी उतनी दुनियादार हो जाती या मैं अपने प्रोफेशन में उसमें बहुत डेडिकेट हो जाती, को बुरा तो नहीं है। आज भी डॉक्टर्स काबिले सलाम है और उनकी ज़िंदगी भी ऐसे ही ऑन कॉल रहती है जैसे दीन के लोगों की होती है। लेकिन हो सकता है ये सोच ना मिलती, ये सुनहरियो ना मिलता ज़िंदगी को, हो सकता है वहाँ दिल काट काट के देख रहे होते लोगों के, यहाँ रूहें कटती हैं। कुरान क्या, ये भी एक रूहानी इलाज ही है ना। तो बहुत सारी नाकामियाँ इंसान को बाद में अल्लाह का शुक्र करने पे तैयार करती हैं कि अल्लाह वो कमी मिली तो कुछ तूने दिया। कुछ अरसे पहले मैं नेशिप टीम के साथ टक टक डॉलर की ट्रेनिंग करवा रहा था। इस ट्रेनिंग में नेस्ले के मैनेजिंग डायरेक्टर डोनाल्ड स्मिथ, इनके टॉप के 16 लोग मौजूद थे। ट्रेनिंग के अख्ताम पर इन सब ने उठकर मेरे लिए तालियां बजाई। इस लम्हे मेरी आंखों में खुशी का एक आंसू झिलमिला गया। बहुत साल पहले जब मैं हर रोज नेस्ले की फैक्ट्री में मजदूरी की तलाश में बस की छतों पर बैठकर जाता था और भूखा प्यासा धुतकार दिए जाने के बाद वापस आता था, तब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कभी मैं नेस्ले जैसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव समेत इनके टॉप मैनेजमेंट को ट्रेनिंग या कोचिंग दूंगा। इनके इसरार पर जब मैंने बार बार फैक्ट्री में नौकरी के लिए रिजेक्ट होने की बात बताई तो इनमें से अक्सर लोगों की आंखों में भी आंसू तैरने लगे। आइन डोनाल्ड ने मुझे मुस्कुरा के देखा और बोला, अच्छा हुआ हमने आपको इस वक्त नौकरी नहीं दी, वरना आज यहाँ आप हमारी ट्रेनिंग ना कर रहे होते। नौकरी करता उनके लिए तो क्या करता, दूध के डब्बों पे शायद ढक्कन लगा रहा होता, एक डब्बे से को उठा के उधर रखता या कुछ और बड़ा काम करता। लेकिन इंसानों को ट्रेन करना, आपको तो खुद नहीं पता इस वक्त आपके साथ क्या हो रहा है। ये सेल्फ ग्रोथ, लाखों रुपया लगाते हैं लोग इस पे, हजारों डॉलर के कोर्सेज ऑफर करते हैं अमेरिका में लोग सिर्फ ये कोर्स करने के लिए जो इस वक्त आप कर रहे हैं। सेल्फ ग्रूमिंग, ये आपकी कामयाबी है या नाकामी है, या आपकी खुशी है या आपकी महरूमी है। कल हम किसी जगह थे और आमतौर पे आप भी जब भी कभी यहाँ पब्लिक रिलेशन वाले लोग, जैसे मिसाल है कि कोई क्लाइंट है कोई ऑफिस में बैठा है उनसे मिलते हैं, आपको ये कैसे मिलते हैं, हाय हेलो हाउ डूइंग फाइन, फोन उठाए हेलो हाउ। तो मैं सोचती थी ये नॉन मुस्लिम अल्लाह को भी नहीं शायद मानती, इतनी खुश क्यों है, क्योंकि उसने ये स्किल सीखी हुई है। कस्टमर डीलिंग क्या है, अब आप देखिए मुंह ढीला करके आधे परेशान आधी आंखें खुली और रिसेप्शन पे बैठे हैं, ऑफिस में कोई झांके और आपको देख के वापस आ जाए कि नहीं मैंने नहीं अंदर जाना, अंदर कोई खतरनाक चीज बैठी हुई है। आज हमारा तो अल्लाह माफ करे ये हाल हो गया, दीनी इदारों में तो लोग कदम नहीं रखते कि अंदर से आवाज आनी है, कौन है, कोई नहीं इधर भाग जाओ। यकीन करें ऐसा है हाल, चीजें बिल्डिंगें बहुत खूबसूरत लेकिन हम इंसान ठोर है। ये बातें जो आपको बता रही हूँ यकीन करें अगर आपने इसको दिल पे लिख के अमल में ले आए, कापियों पे नहीं दिल पे, तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि आपका इस पैगाम तो पहले ही बड़ा खूबसूरत है। मैसेज में तो किसी को शक नहीं है ना, अल्लाह के कलाम से प्यारा पैगाम क्या है। लेकिन अगर हमारी छोटी छोटी कमियाँ बेशियाँ दो स्किल्स पैदा करें, या किताब आपको खुश रहना सिखा रही है, सर उठा के जी क्यों दुखी हैं, गम क्या पड़ गया आपको, क्या अल्लाह के नबी से ज्यादा दुखी हैं आपके ऊपर किससे ज्यादा मुसीबतें पड़ी हैं, हजरत आसिया से ज्यादा आप दुखी हैं, हजरत सारा से भी दुखी हैं, आपको क्या मसला क्या पड़ गया? क्या आपकी के बच्चे छीन लिए गए अल्लाह के रास्ते में? आप उम्मे सलमा से भी ज़्यादा दुखी हैं? एक एक मिसाल सहाबियात और उम्महातुल मोमिनीन की सूरत में हमारी आंखों के सामने खुल जानी चाहिए अपने हालात पर रोते हुए। कमी एक ही है, हमें खुश नहीं रहना था। हम दुनिया की नेमतों को अपना हक समझते हैं, जरा सा काम होते हैं हम कहते हैं देखा अल्लाह ने हक नहीं दिया, अल्लाह नाउस बिला, और जिंदगी अनफेयर है। और आप एक छोटा सा चावल का दाना मुंह में डाल के अल्लाह मेरा हक तो नहीं था कि ये चावल मेरे दांत के नीचे जाता, ये तूने दे दिया, ये शुक्र है। कुछ ना और सीखें अगर यहां से आप शुक्र करना सीख के जाएंगे ना, तो कम से कम आपके घर वाले हमें दुआएं देंगे कि इनके इस नेगेटिव रवैये ने घर का भी माहौल अजीरन किया हुआ था। यकीन करें हम दुखी होते हैं तो अकेले कोई नहीं होते, दूसरों को भी दुखी करते हैं। थोड़ी देर कहीं आए तो उनको, तो जिनके साथ 24 घंटे रहते हैं, उन मर्दों का क्या हाल होता होगा और उन बीवियों का क्या हाल होता होगा जिनको ऐसे मर्द मिल जाए, और उन बच्चों का क्या हाल है जिनकी माँ को कभी खुश होना ही नहीं, और उन बच्चों का क्या कहना जिनको माँ बाप की कोई नेमत नेमत नहीं लगती। तो जिंदगी में खुश रहना सीखें, जिंदगी का पॉइंट ऑफ व्यू बदल के देखिए, फिर आपको लगे सब कुछ है। यही सबसे खूबसूरत है। अपनी जिंदगी के कौन से पहलू आपको बोझ दिखाई देते हैं? सवाल लिखिए। चंद सवालात आपका आपकी सोच बदलेंगे। दोबारा सुनिए, अपनी जिंदगी के कौन से पहलू आपको बोझ दिखाई देते हैं? पहलू क्या होते हैं? एंगल्स। मसलन इसको समझिएगा, आपकी जिंदगी के डिफरेंट एंगल्स क्या हैं? एक तो आपका ये स्कूल ही है कि यही तो नहीं बोझ लगता, ये कोर्स ले लिया अपने सर पे बोझ, ये वॉलंटियर वर्क, ये जिम्मेदारी बोझ है। लिखिए बैठ के मुझे क्या बोझ लगता है। घर तारी, कुकिंग, स्टिचिंग, सिलाई, कुछ भी। दूसरा सवाल खुद से कीजिए, किन बातों पे आपको शर्मिंदगी महसूस होती है? अगर आप दुखी हैं तो जरूर आप शर्मिंदा होंगे, तो किन बातों पे आप शर्मिंदा हैं? फिर किन नाकामियों को आप दूसरों से छुपा के रखना चाहते हैं? बताना नहीं चाहते कि दूसरों के सामने खुल गई तो मेरी तो इज्जत ही चली जानी है जो थोड़ी सी भी है। फिर अगला सवाल, किन बातों में आप खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं, और क्या चीजें आपको महरूमी लगती हैं? सोच लें आप अपने शॉर्ट अपनी शॉर्ट कमिंग्स लिखिए, अपने आप को नाकेदाना नजर से लिखिए, मेरे अंदर कमी क्या है? क्या मेरी आंख नहीं है? क्या मैं लंगड़ी हूं? क्या मेरा एक हाथ छोटा और एक बड़ा? क्या मेरे आधे सर पे बाल है आधे पे नहीं? सर में दर्द है ना, सर तो है ना, दिमाग में दर्द तो नहीं है ना, बुखार है ना, कैंसर तो नहीं है ना, हाथ में दर्द है ना, दिल में दर्द तो नहीं है ना, बैठ नहीं सकती, चल तो सकती हूं ना, चल नहीं सकती, खड़ी तो हो सकती हो ना। हर एक सोचे, अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि हमारी सोच सीधी हो जाए। हर एक इंसान अपनी जिंदगी पे गौर करे तो उसको ये बात समझ आ सकती है कि अल्लाह ने उसको दिया क्या कुछ है। हम क्या सोचते हैं, लिया क्या, महरूम किससे हूं? अपने से नीचे देखेंगे तो आपको हर बंदा अपने से ज्यादा दुखी लगेगा। वो एक कहानी किसी ने सुनाई थी ना, कि एक दफा कुछ लोग जमा हुए एक जगह, तो सारों का ख्याल था हम दुखी हैं, सारे एक जगह जमा हो गए, मीटिंग हुई, बैठे गेट टुगेदर, कहने लगे चलो हम ऐसा करते हैं अपने दुख लेते हैं। अंदर से पूछा कहा बस बड़ा दुखी हूं, आंखें नहीं है, कुछ देख ही नहीं सकता, ये भी कोई जिंदगी है। दूसरा शख्स लंगड़ा था, चल नहीं सकता था, उसने कहा कि देखो तुम तो देखते नहीं हो ना, तो मैं तो देखो कितना बदनसीब हूं, देखता हूं फिर भी चल नहीं सकता। कहा अच्छा क्या करें? कहने लगा कि फिर ऐसा करते हैं अपना दुख बदल लेते हैं, टांग मुझे दे दो और मेरी टांग तुम ले लो। अब क्या हो गया, स्विच हो गई कहानी, लंगड़ा अंधा और अंधा लंगड़ा बन गया। अब क्या हुआ, अगर दोनों खुश थे? इसी तरह बाकियों ने भी बदल लिए दुख सुख, तो आखिर में फिर क्या नतीजा निकला? कहने लगा मुझे मेरा वापस करो, मेरा बेहतर था। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कई दफ़ा आप अपने प्यारों में, रिश्तेदारों में, लोगों को तकलीफ़ों में देख के कहते हैं, अल्लाह ये बर्दाश्त कैसे कर रही हैं, अल्लाह ये कैसे सब्र करेंगी। लेकिन आप उनसे पूछें ना तो वो क्या कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है थोड़ी आई है मेरे ऊपर। वो मुतमईन होते हैं। आप एक कड़वी गोली नहीं खा सकते किसी को, आप इंजेक्शन लगवाता देखते हैं, आपने कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया किसी को, आप ऑपरेशनों में जुता हुआ देखते हैं फिर भी वो खुश है। आराम की गरानी में कमी क्या है, फिफड़े नहीं, दिल नहीं, दिमाग नहीं, जिस्म के अंदर कोई कमी है, सोच नहीं, हमारे अंदर इमोशंस नहीं, सोच की ताकत नहीं, क्या कमी क्या हमारे अंदर, कुछ भी नहीं, तो फिर खुश रहें, फिर दुखी ना रहें। क्योंकि ज़िंदगी इतनी कीमती है, ये दुखी रहने के लिए नहीं है। कब्र में चले जाएंगे अपने दुखों के साथ, करके कुछ नहीं जाएंगे। तो ज़िंदगी को कभी अनफेयर ज़िंदगी ना कहें। लिस्ट बनाएं, क्या कमी है मुझे अंदर, लिख के, और आप बैठ के लिखेंगे तो फिर फ़ायदा होगा, वरना नहीं फ़ायदा होगा। और जब आप ये फहरिस्त मुरत्तब कर चुके तो मेरी कहानी को जहन में लाइए और सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परेशानियाँ, कमज़ोरियाँ, खामियाँ और महरूमियाँ आपकी असल ताकत है। यानी महरूमियाँ आपकी ताकत है, क्योंकि एनर्जी मिलती है बंदे को। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज बोझ लगने वाली ये सच्चाइयाँ कल को आपके लिए तोहफे का दर्जा इख्तियार करने वाली हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आज की सारी जहमतें कल रहे महसूस हो सकती हैं? आपको जैसे यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल इस तरह मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मजदूर का बेटा होना कभी मेरे लिए शर्मिंदगी से ज़्यादा भी कुछ हो सकता है। लेकिन आज कौमी टीवी पे दिन में दर्जनों बार कहता नज़र आता हूँ, अपने मकसद को पाने के लिए वॉल चॉकिंग भी की। वॉल चॉकिंग समझते हैं, ये दीवारों पे जो लिखते हैं आमिल नजूमी, हाँ, और वो पेडस्टल फैन की मशहूरियाँ। कभी आप बाय रोड सफ़र करें पंजाब में, सड़कों पे नुस्खे लिखे होते हैं दवाइयों के और आमिलों के और जादूगरों के और महबूब आपके कदमों में। अब एक शख्स जो कभी वॉल चॉकिंग करे, आज वो लोगों को जीना सिखाए, तो बड़ी बात है ना। फैक्ट्रियों में मजदूरी भी की, मजदूर का बेटा हूं मैं क्यों झिझकता। जिंदगी बज़ाहर अनफेयर है, लेकिन जिंदगी के स्टेडियम में तमाशाइयों के बेंच पे बैठ के शिकायतों की जान छो अगर मैदान में कूद जाएं तो जल्द ही एहसास होगा कि खेल के कवानीन, मुखालिफ टीम, तमाशाई, हत्ता कि एम्पायर भी अगर आपके खिलाफ हो जाए तब भी ये खेल खूबसूरत है। आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि हर वाक्य के पीछे परवरदिगार का एक मकसद होता है, जिसे समझ नहीं पाते, इसीलिए शोर शराबा करते हैं, रोते हैं, मार धाड़ पर उतर आते हैं, अधूरा छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस मकसद को पा लेते हैं तो शिकायतें दुम दबा के भाग जाती हैं, इनकी जगह शुक्र ले लेता है। हम अपने बचपन पे हंसते हैं और हैरान होते हैं कि हम कुदरत की इस मसलहत को इस वक्त क्यों ना समझ सके। दोस्तों, आज जिस दुख ने भी आपको अफसरदा किया हुआ है, जिस नाकामी ने भी आपके अज़म को सरनगू कर दिया है, जिस महरूमी ने भी आपके एतमाद को खोखला कर दिया है, जिस शर्मिंदगी ने भी आपकी इज्जत नफ्स को दाव पे लगा दिया है, जिस मुफलसी, तंग दस्ती, परेशानी और उलझन ने भी आपको घेरा हुआ है, यकीन मानिए इसके पीछे कुदरत का एक राज है, मकसद है, मसलहत है। अल्लाह पर भरोसा कीजिए। जिंदगी के अनफेयर होने की शिकायत छोड़कर आगे बढ़ने की जस्तजू जारी रखिए। देखते ही देखते आपकी ज़िंदगी कामयाबियों, खुशियों और खुशहालियों से भर जाएगी। ज़िंदगी अनफेयर सही, लेकिन है बड़ी खूबसूरत। अब आप बताइए आपकी ज़िंदगी कैसी है? कितनों को लगता है कि ज़िंदगी अनफेयर है? पहले लगता था, अब तो नहीं लगता। इंशाल्लाह दिन ब दिन आपको ये ज़िंदगी खूबसूरत लगेगी और आप महसूस करेंगे कि इसी में सबसे ज़्यादा हुसन है। कोई बात जो सुनते वक्त दिल में आई हो पूछ लीजिए या बता दीजिए। जी आप
अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र जी, बहुत ज़्यादा मैं तो कहती हूँ अल्लाह सुब्हान तआला की बहुत ज़्यादा नेमतें हैं जिनका हम शुक्र अदा हक अदा नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा बचपन से लेकर आज तक मतलब बुढ़ापे तक बहुत ज़्यादा अल्लाह सुब्हान तआला
देखिए, दीन इस्लाम का पहला पहला लफ्ज़ जो कुरान में है वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र जिंदगी का खुलासा है। और कई बार की कही हुई बात कि शुक्र शक्कर है, जैसे कड़वी चाय को शक्कर मीठा कर देती है, इसी तरह शुक्र कड़वी जिंदगी को मीठा कर देता है। शुक्र ले आएंगे ना तो आप सबसे खुशकिस्मत हैं। कभी भी लगे ना कि हम दुखी हैं तो अपने से नीचे वालों को देख ले, और कभी लगे कि हम बहुत अच्छे हैं तो अपने से ऊपर वालों को देख ले, और कभी ये लगे ना बहुत कुछ कर रहे हैं तो अपने से ज्यादा करने वालों को देख ले। जी साइमा जी, आपने क्या सीखा? महरूमियों को कमज़ोरी नहीं ताकत बनाते, और हम महरूमियों की वजह से ज़हनी जिस्मानी इमोशनली कमज़ोर हो के बीमार पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं कि हम नेकी के काबिल नहीं हैं। कमज़ोर लोगों पे हर बात का हमला होगा, मजबूत लोगों के ऊपर से पहाड़ भी गुजर जाए कहते हैं फिर गुजर गया, अब मैं क्या करूँ, मैं तो ठीक हूँ। छोटी छोटी बात पर अगर हम दुखी होंगे तो दीन का काम हम कभी नहीं कर सकेंगे। जी आप फरा जी। खत किन का था?
वो मतलब के शेयरिंग थी कि एक आदमी अपने मतलब के डॉग लिखता है, डायरी लिखता है, तो उसमें अपने साथ जो एक साल के वाकयात हुए थे वो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट से लिखते हैं कि मैं
जी जी
बड़ा, फिर उसकी बीवी वो ही खत मतलब
जी, इनको वो खत याद आ रहा है, शेयरिंग की थी आप लोगों के साथ कि कैसे एक शख्स अपने साल के गुजरने पे लिखता है कि इस साल में क्या क्या हुआ, मेरे बेटे का हॉस्पिटल एक्सीडेंट हुआ, फिर उसको फ्रैक्चर लगा, फिर उसके बाद ये वो, तो फिर उसकी बीवी ने उन सारे वाक्यात को पॉजिटिव में लिखा कि इस साल हादसे में का शिकार होने के बावजूद मेरा बच्चा बिलाखर ठीक हो गया, मेरी जॉब चली गई लेकिन मुझे कितना फारिग वक्त मिल गया। तो ज़िंदगी बस यही है, धुंधला शीशा है, आपको नज़र नहीं आती उसकी हिकमत क्या है, तो इंतज़ार करें, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला आपके लिए उसको खैर करेगा। ऑनलाइन से भी शेयर कीजिए। जी अब
बहुत सी नाखुशगवार चीज़ों को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मैं सोच रही थी ज़िंदगी के जितने भी मिसाइल हमारे आसपास होते हैं या हमारी ज़ात के साथ, वो उस वक्त तक ही होते हैं जब तक उनको कबूल नहीं करते।
ठीक, रेजिस्टेंस है, फाइट लगी हुई है, बस हम नहीं करेंगे, और जिस दिन कबूल कर लेंगे ना उस दिन आप कहेंगे अब हो जाए फिर जो ना, ये सिर्फ फाइटिंग है, और ये ऐसे में तकदीर पर ईमान में कमी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब की कमियों को बेहतरियों में बदले, और ज़िंदगी को अनफेयर समझने की बजाय ज़िंदगी की खूबसूरती को देखें। सुभानल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।